نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اس رب کا بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے ان پیارے محبوب دنوں کو دیکھنا نصیب فرمایا شعور کے ساتھ. بہت فرق ہے شعور کے ساتھ کوئی دن گزارنے میں اور بے شعوری کے ساتھ. ویسے تو جتنے بھی لوگ اس وقت زمین پہ چل پھر رہے ہیں سبھی نے یہ 10 دن دیکھے ہیں، مگر شعور آ جانے سے، سمجھ آ جانے سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، یہ آپ نے اس عشرے میں ضرور محسوس کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے. تو الحمدللہ کہ علم آنے سے ہمیں توفیق مل گئی یہ نیکیاں کرنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کئی عابدوں پر بھاری ہوگا. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر چکے ہیں یا آج کے دن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے قبول فرمائے، اس کی بہترین جزا دے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یہ دن اس لیے اتنے اسپیشل ہیں کہ ان دنوں میں بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں نہیں ملتی، یعنی اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. جیسے ان دنوں میں قربانی کی جائے گی اب، جو سال میں کسی اور دن نہیں آپ کر سکتے. ان دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، کوئی 8 دن نہیں بھی رکھتا تو 9th ذوالحجہ کا تو سبھی رکھ لیتے ہیں. ان دنوں میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی عبادت جو ان دنوں کی وہ حج کی عبادت ہے، کہ سال میں آپ کبھی بھی حج نہیں کر سکتے. تو یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکھا ہے. تو خوب خوب اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ ان دنوں کی ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، تو دوسرے دنوں کی نسبت یہ دن بہت اسپیشل ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محب لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ پھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ کوئی موقع مس نہ ہو جائے، روزہ بھی رکھ لوں، تکبیرات بھی پڑھ لوں، نوافل بھی ادا کر لوں، قرآن کی تلاوت بھی جوش اور جذبے سے کر لوں، کسی کو افطار کرا دوں، کسی مسکین غریب کی مدد کر دوں، صدقہ بھی کر لوں، اخلاق بھی اچھے کر لوں، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھوں. وہ جمع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. جس کو ہیلپ چاہیے اس کے لیے کھڑی ہو جاؤں، کسی بیمار کو پوچھ لوں، کسی سے ہمدردی کر لوں. تو ان دنوں میں کوئی بھی نیکی چھوٹی ہے ہی نہیں. جس کو آپ چھوٹی سمجھتے ہیں نا، وہ بھی ان دنوں میں چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے، میگنیفائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. ابھی بھی الحمدللہ آج کا دن موجود ہے، کل کا دن موجود ہے. پتہ نہیں ہے پھر کس نے اگلے سال میں دیکھا کہ ہمیں یہ عشرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہیں، اور کس حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تو پھر کوئی ایسا چانس جانے نہیں دیتا نا. تو دیکھیں آپ کتنے مختصر سے یہ دن تھے، جلدی سے گزر جانے والے. کئی لوگ تھوڑے دنوں میں بھی اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں. اور کل اصل عید انہی کی ہوگی جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ان دنوں میں، بھاگ بھاگ کے دکھایا اس کو. پہلے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں عید کے مسائل سے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے دن کا میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی فضیلت کرنا کیا اس میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. اب جو کل کا دن ہے، جو یہاں پر عید کا دن ہے، हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दिनों में सबसे अजीम दिन यही कुर्बानी का दिन, यौमुन नहर इसको कहते हैं। हज़रत सईद खुदरी फरमाते हैं कि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले, फिर वहाँ लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाए और इन्हें सदका और खैरात करने का हुक्म दिया। फरमाया लोगों सदका किया करो। फिर औरतों के पास से गुजरे तो फरमाया औरतों की जमात सदका किया करो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारी तादाद आग में जहन्नुम में सबसे ज्यादा है। तो सदका ईद के दिन भी करना है। ख़ास तौर पे इस हदीस से हमें पता चलता है कि ईद के दिन तो आपने ख़ास तौर पे ताकीद फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूँगा, तो डरे नहीं कि कम हो जाएगा। आप कुर्बानी भी जो कर रहे हैं तो ठीक है, मगर सदका भी करें। कुर्बानी भी एक तरह का सदका ही है, लेकिन अलग से भी करें, और ख़ास तौर पे हम औरतें तो ज़रूर करें। ईद के दिन शुरू सदके से करें, और यौमुन नहर इसकी बड़ी फजीलत है क्योंकि इसमें कुर्बानी की जाती है। तो अल्लाह ताला ने साल के तमाम दिनों में इस दिन को अजीम दिन बनाया है। आप इससे कुर्बानी की अहमियत को भी सोच सकते हैं कि कितनी अहमियत होगी कि कुर्बानी के दिन को अल्लाह ताला ने ये फजीलत दी है। इस दिन खून बहाया जाता है, जानवर को ज़िबा किया जाता है, और अल्लाह ताला को इस दिन कुर्बानी के से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने कुर्बानी का एहतमाम किया होगा, बल्कि औरतों ने शौक़ से अपनी पॉकेट मनी से कुर्बानी के लिए पैसे निकाले होंगे। बेशक आपके शौहर भी करते होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, ये शौक़ की इबादत है, और इतने ज़्यादा पैसे नहीं लग जाते। उन पैसों से शायद आपका कोई एक ब्रांड नेम का पर्स भी नहीं आता होगा, जितने पैसे कुर्बानी के करने में, एक शेयर डालने में लगते हैं। तो ज़रूर आप कोशिश करें कि आप कुर्बानी अपनी तरफ से भी कर लें। अब जानवर तो ले लिया, मगर एक चीज़ ना भूलिएगा, वो है दुआ करना कि या अल्लाह कबूल कर लेना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। इसलिए कि हाबील और काबील की कुर्बानी का जब जिक्र आता है ना कुरान पाक में, तो हाबील की आपको पता है कुर्बानी कबूल हुई, काबील की नहीं हुई। तो कुरान में आता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह कबूल करता है मुत्तकी लोगों से। तो हम तो ऐसे मुत्तकी हैं नहीं, अल्लाह से दुआ ही करते हैं, अल्लाह ताला तू कबूल कर लेना। कुर्बानी ईद के दिन के अलावा आप अगले 3 दिन में भी कर सकते हैं, 11, 12 और 13 को, मगर उलमा कहते हैं कि अफजल यही है कि ईद के दिन करें, इसके बाद के दिनों का अजर कम होता जाता है फिर। और दूसरी चीज़ जो याद रखने की वो है तकबीरात। ख़ास तौर पे आपने आज की नमाज़ देखें, आज हुई है हमारी फजर, अल्हम्दुलिल्लाह एक हो गई। फजर के सलाम फेरने के बाद से मैंने आपको बताया था ना आपने तकबीरात पढ़नी, के सलाम फेरते ही सबसे पहले तकबीरात, या तो आप अपनी नमाज़ की जगह पे लिख के लगा लें, क्योंकि ये भूल जाएगा, हमें आदत नहीं होती ना। तो तकबीर पढ़नी है और फिर उसके बाद भी जारी रखें, लेकिन नमाज के बाद लाजमी पढ़नी है। वो अलग तरह की मैंने आपको तकबीरें बताई थी कि ये भी इन दिनों के लिए ख़ास हैं, और ये ना हो कि ईद वाले दिन खुशी में भूल ही जाएं। तो ये आज से शुरू हो गई हैं, अब 13 तारीख को असर की नमाज तक ये तकबीरात पढ़नी है। असर की नमाज के बाद पढ़ के फिर उसके बाद की नमाजों में पढ़ने की नहीं है ज़रूरत, मगर यही सुन्नत है कि अभी से शुरू करके असर की नमाज के बाद तक। और ईद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लिबास पहनते थे, तो अब चाहे हमें किसी ने इनवाइट नहीं भी किया, ना हमने किसी के घर जाना है, ना किसी ने अगर हमारे घर आना है, तो आपने ये सोच के नहीं ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनने से रुकना कि अब मुझे कौन सा किसी ने देखना है, मैं तो घर पे ही हूँ, कहीं जाएंगे कोई लोगों ने देखना हो या कोई आएगा तो फिर ही हम ईद के कपड़े पहने, नहीं, बल्कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के पहनने, तो आपको अजर भी मिलेगा। ठीक है, गुसल करना मुस्तहब है, नमाज ईद के लिए जाने के लिए सहाबा और ताबीन से साबित है, वो ईद की नमाज से पहले गुसल फरमाते थे, तो पसंदीदा अमल है। खुशबू भी मर्द लगाएं, औरतें इससे परहेज़ करें, घर से बाहर जा रही हैं तो, और ऐसा ना हो कि जर्क बर्क लिबास पहन के ईद पढ़ने चले जाएं, कि नए कपड़े पहनने और खूबसूरत पहनने तो हम ईद पढ़ने के लिए पहन लें। नहीं, आपकी जो ब्यूटी है, आपका ड्रेस, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, ये डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, ये जाहिर नहीं होनी चाहिए किसी भी नामहरम पे। जाएं जरूर ईदगाह में, मगर ये ना हो कि वापसी पे गुनाह अपने सर पे लेकर आ जाए। और सभी औरतों को जाना चाहिए, इवन हैज वाली औरतों को भी हुक्म दिया गया कि वो भी ईदगाह जाए, वो नमाज नहीं भी पढ़ेंगी मगर मुसलमानों की दुआ में शामिल हो जाएंगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हुक्म। तो ईद की नमाज पढ़ना कोई ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ दें या सोए पड़े रहें, ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, नहीं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए लाजमी जाएं। हज़रत उम्मे अतिया ने सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई औरत ऐसी हो कि उसके पास पर्दे के लिए चादर ना हो तो फिर वो क्या करे, मानी वो कैसे फिर जाए ईद की नमाज पढ़ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो जाए ही ना फिर, अब उसके पास नहीं है चादर तो जाए ही नहीं, और ये भी नहीं फरमाया कि फिर चादर के बगैर ही चली जाए, कोई बात नहीं, ईद का दिन है, चादर की क्या जरूरत है ईद के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपनी मुसलमान बहन से एक चादर ले ले, यानी किसी से बोरो कर ले। तो इससे हमें पता चलता है कि उस दिन भी पर्दे का अपना एहतमाम रखना है, और इस मौके पे बच्चों को भी ईदगाह ले जाना है। तो जब आप घर से निकलेंगे इंशाल्लाह, ईद उल फितर होती है तो हम कुछ खा के ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। ईद उल अज़हा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ही है कि नमाज के बाद वापस तशरीफ लाते थे, कुर्बानी करते थे, फिर उससे खाते थे। तो यहाँ तो ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ पे इस तरह से कर लें। हमारे यहाँ पे अब आप वापस आके जो भी आपने खाना है तो वो ईद की नमाज पढ़ के वापस आके खाएं, कि सुन्नत पूरी हो जाएगी, आपको अजर मिलेगा। और ईद की जो नमाज होती है वो मस्जिद में नहीं होती बल्कि खुले मैदानों में अदा की जाती है। आप ये देख लें कि मस्जिद नबवी की कितनी फजीलत है, वहाँ की नमाज दूसरी मस्जिदों में नमाज करने से, पढ़ने से बहुत ज़्यादा अफजल है और अजर में बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को छोड़ के मैदान में नमाज अदा की। तो हमारी मस्जिदें कोई मस्जिद नबवी से ज़्यादा तो नहीं अफजल है, तो हमेशा खुले मैदानों में ही करनी चाहिए। इस तरह जब आप ईदगाह की तरफ जाएं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाएं, और जब तक नमाज खड़ी ना हो जाए आपने तकबीरात पढ़ते रहना, जब नमाज अदा हो गई तो फिर इसके बाद नहीं कहनी। और ये नमाज, इससे पहले कोई नफली नमाज नहीं पढ़नी कि उससे पहले आप घर से कोई नफल पढ़ के जाएं या कुछ है, नहीं, यानी आपने फजर पढ़ी उसके बाद बस यही नमाज पढ़नी है। ये 2 रकत होती है, पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद, याद रखिए तकबीर तहरीमा को इंक्लूड नहीं किया, तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरें कहनी है, और दूसरी रकत में सजदे से उठने के बाद 5 तकबीरें कहनी है, यानी जब आप खड़े हुए हैं तो फिर 5 तकबीरें। यही सिर्फ फ़र्क है आम नमाज में और ईद की नमाज में। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी ये नमाज रह जाती है तो फिर आप अकेले या घर के अफराद मिलके ये नमाज अदा कर लें इसी तरीके के साथ, मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि ये नमाज ईदगाह में अदा हो। ईद की नमाज का खुतबा जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता सुनना। अब्दुल्ला बिन साहिब का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं ईद की नमाज में हाजिर हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की तो फरमाया अब हम खुतबा करेंगे, लिहाजा जो खुतबा सुनने के लिए चाहे तो बैठे और जाना चाहे तो चला जाए। ये अबू दाऊद की रिवायत है, तो इसलिए इसकी भी ऑप्शन मौजूद है जी। तो ये थोड़ी सी ईद के मसाइल की बात हो गई, अब असल बात की तरफ आते हैं कि ये जो आज का दिन है, पहले मैंने वो चीज़ें इसलिए बता दी हैं कि ये ना हो कि ईद की एक्साइटमेंट में आप आज की जो बातें मेन वो भूल जाएं, तो वो बातें समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो आज का दिन है, आरफा का दिन जिसको कहते हैं, नौ ज़िलहज्जा, ये समझ ऐसे लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज है। ये 10 बेस्ट डेज चल रहे थे ना, इन बेस्ट का भी बेस्ट है, तो ये कितना फजीलत वाला दिन होगा। ये अहम तरीन दिन है। उलमा यहां तक लिखते हैं कि अगर इन 10 दिनों में अरफा के दिन के सिवाय कोई दिन होता ही ना जो फजीलत वाला हो, तब भी अकेला ये दिन काफी था इन सारे दिनों की फजीलत के लिए। अकेला, यानी ये इतना ज्यादा फजीलत वाला दिन है। तो समझ लें, ऐसे समझ लें जैसे ये सारे दिनों का बादशाह है, जैसे रमजान की आखिरी रातों की मलिका लैलतुल कदर है ना, इस तरह ये इन सब दिनों का बादशाह। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है जो अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब किया। ये होता है कि लैलतुल कदर का तो हमें पता ही नहीं होता, मगर इस दिन का तो सबको पता है। तो फिर इस दिन को सब दिनों से अलग होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो क्या खास बात है इस दिन की, क्या इसके अंदर है? तो आपको मैं हदीस से बताती हूँ कि ये दिन कितना खास है। इसकी पहली फजीलत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुनाहों की मग़फ़िरत का दिन है और जहन्नुम से आज़ादी का दिन है। अल्लाहु अकबर, मुस्लिम की रिवायत है ये, जहन्नुम से आज़ादी का दिन है। और दूसरी मुस्लिम में रिवायत है कि दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है, यानी साल में आप यू नेम इट, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नुम से आजाद फरमाए जितना अरफा के दिन फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि हमें फिर ये दिन मिल गया। अल्लाह अकबर, यानी हमारे पास भी एक चांस आ गया अपनी आज़ादी लेने का। और ये ही दुआ है कि अल्लाह आज के दिन सूरज गुरूब होने से पहले हमारा नाम उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तू जहन्नुम से आज़ाद कर दे। हम भी वो खुशकिस्मत लोग हों, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने एक दफा जहन्नुम से आज़ादी दे दी, फिर दोबारा उसको थोड़ी पकड़ेगा, दोबारा उसमें नहीं फेंकेगा। जैसे कोई आका गुलाम को आजाद कर दे तो फिर दोबारा तो नहीं उसकी गर्दन पकड़ता। अल्लाह अकबर। और इसकी आप देखें कि वैसे ही इस महीने में, इस महीने पे साल खत्म हो जाता है, तो हमारी यही आरजू होनी चाहिए कि इस साल को ख़त्म हम ऐसे करें कि हमारी जहन्नुम से आज़ादी हो गई हो और हमारे गुनाह माफ़ हो गए, कबीरा सगीरा। दूसरी इसकी बहुत बड़ी फजीलत ये है कि ये दुआओं के लिए बेस्ट डे है, बेस्ट डे, बेस्ट डे। सब दुआएं जितनी भी आपने पूरे साल में मांगी है ना, ईद के दिनों में, रमजान के दिनों में, उन सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। इस वक्त हाजी अरफात में होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। और ये भी बता दिया कि क्या दुआ मांगनी है इसमें, और बेहतरीन दुआ, वैसे तो आप जितनी भी मांगे मगर एक दुआ बता दी, वो बेस्ट है, फरमाया जो मैंने और मुझसे पहले के अम्बिया ने की है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आज के दिन की दुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बता दी, हमारी तो मुश्किल ही खत्म हो गई। तो हमने इस दुआ को बहुत मांगना है, और भी जितनी आपने दुआएं मांगनी, समझ लें आज दुआओं की कबूलियत का दिन है, आज दुआएं करने का दिन है। अब ये जो 8 दिन जो भी किया है अल्लाह ताला से, इसके बाद एंड में आके यही मांगे कि अल्लाह ताला ये सारे को कबूल कर ले, जो भी थोड़ा बहुत कर सके। और फिर मजदूर की मजदूरी एंड में दी जाती है ना, तो आपने जितना काम करना था कर लिया, अब बस एंड आ गया इन दिनों का। तो इनको हमने स्टार्ट भी नेकी के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड भी हमने नेकी के साथ करना। तीसरी बहुत बड़ी फजीलत जो आज के दिन की है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया आज के दिन, और इसको हमारे लिए पसंद फरमा दिया, रहती दुनिया तक कयामत तक। अब इसके सिवा कोई और दीन नहीं है जो इसको सुपरसीड करे या जो इसको ख़त्म करके नया कोई आ जाए, बस यही अब दीन है जो अल्लाह को काबिले कबूल है। तो इसके बारे में आयत भी उतरी हुई है सूरह मायदा में आयत नंबर 3 जो इसी दिन उतरी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने फरमाया आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया, यानी अब ये दीन है जो अल्लाह को एक्सेप्टेबल। हज़रत उमर से एक यहूदी ने कहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में तो एक ऐसी आयत है, अगर हमारे यहूदियों पे नाजिल होती ना, हम तो ईद मनाते उस दिन पे। तो आपने पूछा वो कौन सी आयत है, उसने यही कही। हज़रत उमर ने फरमाया मुझे वो दिन भी पता है और वो मकाम भी पता है जब ये आयत उतरी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आराफा में थे और जुमे का दिन था। तो बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है, तो जुमे के दिन फरमाया कि हम तो वैसे ही हमारे लिए जुमा मुबारक दिन है, हमारे लिए एक तरह की ईद का दिन है, और आराफा भी आता है तो उसके बाद ईद ही है हमारी। तो यानी ये प्यारा दीन जो हमें मिला है ना, इसकी तकमील हुई है इसके बाद, इस आयत के उतरने के बाद कोई हलाल हराम का हुक्म नहीं आया। ठीक है, आयतें और उतरी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के भी ये आखिरी दिनों की बात है जब आपने हज किया था, तो उसके बाद तो ज़्यादा टाइम ही नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, तो ये आखिर के उन दिनों की बात है, और उनमें अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, और इसके बाद हेयर एंड देयर और आयतें हैं, मगर कोई चीज़ भी ना हलाल की गई, ना हराम की गई, ना कोई और अहकाम दिए गए, बस दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये इतना खूबसूरत दिन है, और मेरा तो ख्याल है कि इसके लिए इतना ही काफ़ी था, अगर यही सिर्फ कह दिया जाता कि आज के दिन में जहन्नुम से आज़ादी मिल जाती है तो ये भी काफ़ी था, मगर इतनी सारी हमें फजीलतें पता चल गई। तो हमने इस आज के स्पेशल दिन को स्पेशल बनाना है, ठीक है, इसको आम दिनों की तरह नहीं स्पेंड करना। आज के दिन में अल्लाह ताला आरफा वालों के बारे में फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला हदीस में आता है कि, जो पूरी हदीस में आपको सुना देती हूँ, कि अरफा के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला कसरत से बंदों को आग से आज़ाद करे। इस रोज़ अल्लाह ताला बंदों से बहुत करीब होता है और फरिश्तों के सामने उनकी वजह से फ़ख्र करता है और फरिश्तों से पूछता है ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आज के दिन में खूब खूब मांगे अल्लाह ताला से। देखें लैलतुल कदर में तो फरिश्ते उतरते हैं ना, इस दिन में अल्लाह ताला खुद करीब हो जाता है बंदों से। तो अब अंदाज़ा आप करें फिर इस दिन की अहमियत का, और अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं, देखो मेरे बंदों को कैसे अपने घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर। तो हाँ, जो लोग चले गए ठीक है, उनको सआदत मिली, जो नहीं जा सके, अल्लाह बड़े करीम और रहीम ज़ात है, तो वो उन पे भी करम फरमाता है जो नहीं जा सके। इसी वजह से इस दिन का रोज़ा रखा जाता है कि हमारे पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएं और अगले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएं। तो जो नहीं भी जा सके, अल्लाह ताला उनको भी कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटी देता है। अल्लाह चाहता तो बस कुछ भी ना, इस दिन को, इस दिन के रोज़े को कुछ भी ऐसी फजीलत ना होती, लेकिन इस एक दिन का रोज़ा रखने से सोचो अल्लाह ताला कितना करीम है कि, यानी उसके बख्शने के बहाने देखें कि पिछला एक साल और अगला भी एक साल इसके गुनाह माफ हो जाते इंसान के। तो इंसान की खुशकिस्मती है कि उसको ये दिन मिल जाए और वो इसमें रोजा रख सके। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि देखो वो कितना अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार है। छोटे छोटे कामों पे उसने कितने बड़े अजर रख दिए। पूरे साल के रोजे रखने पे नहीं फरमाया कि पूरा साल रखोगे तो साल के गुनाह माफ होंगे, सिर्फ एक दिन का उसके से 2 साल के गुनाह माफ हो जाए। ये कितनी बड़ी फिर अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दे दी, एक और दरवाजा खोल दिया कि बख्शवा लो अपने आप को। तो इसमें खूब मेहनत करनी है, खूब कोशिश करनी है आज के दिन में, एक एक लम्हा नेकी में गुजारे। औरतों के काम ऐसे होते हैं कि वो खाली नहीं बैठ सकती, जाहिर है बहुत सारे घर के काम होते हैं जो जरूरी भी होते हैं। तो एक तो नए काम कोई ना खोल के बैठ जाएं कि उनमें शुरू हो जाए, जो आपके बहुत ही जरूरी काम है अब आज के दिन सिर्फ वो ही करें। और जितने भी हमने प्रोग्राम्स पिछले किए हैं उनमें जो भी आपने सीखा है, मसलन एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ना, मसलन है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना, अजगार करना सुबह शाम के, इसी तरह तकबीरात बयान करना, तस्बीहात, तहमीद, मैंने आपको बताया है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहने की कितने अजर हैं, कितने अजर हैं, बेशुमार बेशुमार। तो वो आप आज के दिन अवेल कर सकती हैं, आज के दिन उसमें तो कुछ नहीं मसला है। लेकिन जो हमने लाजमी काम करने हैं, हमारे ऐसा मसला है कि हम लोग बैठ नहीं सकते कि हम बैठ के कहीं तस्बीह लेके बैठे तो फिर हम कुछ पढ़ेंगे। तो हमें सारा दिन कहीं किचन में भी होना है, सबके लिए इहतमाम भी करना है, इफ्तारी भी करनी है, सब सब चीजें ही हैं साथ लगी हुई। तो ऐसे में बहुत आसानी के साथ ये तस्बीहात पढ़ के आप अपने लिए अजर के दरवाजे खोल सकते हैं और खजाने खोल सकते हैं अजर के। और दुआएं तो चलते फिरते ही दुआ करें, और इसमें भी दुआ में भी, और जो आज की मैंने दुआ आपको बताई है इसको करने में भी कोई आपको खास तरद्दुद की जरूरत नहीं, ना कोई वुजू की जरूरत है, ना कोई पाकी की जरूरत है, ना कोई और ऐसी चीज की जरूरत है, ना कहीं बैठने की जरूरत है। तो बस बात वही है ना कि हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, चांस अल्लाह ने दिए हमें, अब हम कितना इन चांसेस को, इनसे फायदा उठाते। तो खास तौर पे रोजा खोलने के वक्त सुकून से बैठ जाइएगा, कम से कम आधा घंटा पहले बैठ जाएं और उस वक्त दुआएं करें। क्योंकि जब हमें पता है कि इस वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और दिन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज, यानी आप कभी भी और इस टाइम पे ऐसे दुआएं करेंगी तो वो नहीं, ठीक है रोजे के साथ आप बाकी दिनों में भी हो सकते हैं, रमजान में भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर बेस्ट डे थोड़ी होगा, और वो बेस्ट डे दुआ का थोड़ी होगा। तो वो बेस्ट डे खत्म होने जा रहा है और आप उस वक्त दुआएं करें, और उस वक्त अल्लाह ताला को अपनी जो भी आपने काम किए हैं उनके वसीले से भी अल्लाह से मांगें कि अल्लाह तेरी खुशनूदी के लिए ये किया ये किया, अल्लाह ताला तू मेरे ये काम संवार दे। देखें ये जो नेकियों के मौके मिल रहे हैं ना, ये इनको ये ना समझे, मैं तो खुद ही पहले ही इतना करती हूँ, मैं तो करती ही रहती हूँ, मैंने और क्या करना है, मैं अब इन दिनों में और क्या खास करूँ, ऑलरेडी मैं तो इतना करती हूँ या मैंने कर लिया। याद रखिए एक हदीस है, सिलसिला सहीहा की हदीस है, बड़ी इंसान को ना परेशान कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी, अब इसको गौर से सुनिए, अगर कोई आदमी अपनी पैदाइश के दिन से लेके इंतहाई कमजोरी और बुढ़ापे में मरे, यानी उसको लंबी उम्र मिली है, वो इतना बूढ़ा हो गया तब जाके मरा, मैं उन्हें सोच लें 90 साल 100 साल की जिंदगी मिसाल के तौर पे कह रही हूं कि उसको मिली है, और पैदाइश के दिन से बुढ़ापे में मरने तक उसके साथ क्या होता रहा। फरमाया अल्लाह की रजा में उसको मुंह के बल घसीटा जाए, अल्लाह की रजा में अल्लाह की खातिर मुंह के बल उसको घसीटा जाए, तब भी वो कयामत के दिन इस अमल को कमतर समझेगा। कयामत के दिन उसको लगेगा ही है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी ये आमाल जो हम आज करते हुए सोचते हैं ना कि मैंने बड़ा कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है। हजरत बिलाल जितने अमल भी ले आए ना, कोई उतनी भी कुर्बानियां दे दे अल्लाह के दीन के लिए, जो घसीटे गए, जो रेत पे लिटाए गए, जिनके जिसम पे गरम पत्थर रखे गए, जो अहद अहद कहने से बाज ना आए, उन जैसे भी अमल कोई ले आए, तब भी वो उस दिन कहेगा, हाय मेरे पास कुछ नहीं, काश कुछ और कर लेती, काश कुछ और बना लेती। तो इसलिए ये सिर्फ इन दिनों की इबादत नहीं है, इनको कंटिन्यू रखना है, बाद में भी करते रहना है। ये रोजे भी ये नहीं कि अब बस रखे तो अब अगले रमजान तक खुदा हाफिज, नहीं, चलो महीने में एक दफा ही रख लिया कर, हर मंडे थर्सडे नहीं रखा जाता, सिर्फ मंडे को रख लें, सिर्फ थर्सडे को रख लें। और आज हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश भी होने हैं, सुभान अल्लाह, और आज बेस्ट दिन भी है, सुभान अल्लाह, और हम रोजे से भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं होना चाहिए, आगे भी कंटिन्यू करना है। इसलिए कि आप देखिए, मैंने आपको ये रोजे की फजीलत बताई थी कि इंसान अगर अल्लाह के रास्ते में एक दिन का भी रोजा रखता है ना, बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल दूर कर देता है। क्या आप नहीं चाहेंगे अपने लिए? फिर एक दूसरी जगह पे है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है ना, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान खंदक खोद देता है, जिसकी चौड़ाई इतनी, यानी ट्रेंच है, इतना गड़ा, एक इतनी उसकी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई कि आसमान और जमीन के बराबर उसकी चौड़ाई है। तिरमिजी शरीफ की ये रिवायत है। तो सुभान अल्लाह, इंसान करके तो देखे वो रब कितना मेहरबान है। तो ये जो कुराने पाक पढ़ा है, इसको भी छोड़ना नहीं है। रोजे की अभी देखें, थोड़े दिन में कुछ थोड़ी सी आदत पड़ी है, तो इसको भी नहीं छोड़ना। जब अबू तलहा के बारे में आता है, साल हा साल उन्होंने रोजे रखे, सिर्फ ईदैन के दिन नहीं रखा करते थे, बस साल साल रोजे रखते रहते थे, इतनी कसरत से रोजे रखते थे कि उसकी वजह से जयीफ होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप इतने कमजोर हो रहे हैं, आप क्यों रोजे इतनी कसरत से रखते हैं? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? इतना खूबसूरत जवाब है, शायद मैं कहती हूँ हम सब के लिए है ये। तो फरमाया, मैं तो एक लंबे सफर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक तवील सफर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जानते हैं वो सफर क्या है? मौत के मरहले, कब्र की मंजिलें, हशर का दिन, मीजान, पुल सिरात, हिसाब किताब, ये हैं वो मंजिलें, ये है वो लंबा सफर। इसके लिए तैयारी चाहिए, और ये एक दिन में नहीं हो जाने, इसके लिए मुसलसल कोशिश की जरूरत है। मुसलसल करते रहेंगे तो कुछ जाके बनेगा, और अगर बस रमजान का ही इंतजार करेंगे या शराय ज़िलहज्जा का ही इंतजार करेंगे, तो फिर तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा हमारा काम। तो इसलिए इन दिनों का फायदा उठा लें, आप पे से बाहर ना हो जाइएगा ईद के दिन, अपनी नेकियों को जाया ना कर दीजिएगा, संभाल के रखना है। और उम्मीद है आप लोगों ने अपने दिल साफ कर लिए होंगे, क्योंकि वैसे भी आज अल्लाह ताला के आगे हमारे आमालनामे पेश होने हैं, और उसकी तो डिले कर दी जाती है माफी, जिसने किसी से झगड़ा किया हुआ है, कीने रखे हुए दिल में, तो दिलों को साफ करना है। आपको बताया था कि माफी मांग लें जिससे, जिसका आपने दिल दुखाया, और माफ कर दें जिसने आपको सताया, ताकि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो जब आप इंसानों के साथ रहते हैं, जाहिर है ये मामला तो होते ही हैं, हम कोई गारों में तो रहते नहीं, या तो कोई तकलीफ पहुंचा देगा या हम किसी को कुछ कह बैठेंगे, ना हम फरिश्ते हैं ना कोई और फरिश्ता है। तो जितना भी किसी ने किया, दरगुजर कर दीजिए आप, जाने दें कि ये खूबसूरत दिन है, और हम नहीं चाहते कि हमारी माफी डिले हो। तो इसलिए माफ करके फिर आज दुआएं करें, दिल से अपने आप में कहें कि अल्लाह फलाने मुझे बड़ा ही सताया, लेकिन अल्लाह मैं तेरी खातिर माफ करती हूँ कि तू मुझे माफ कर दे।
ये इंशाल्लाह ताला अब हम तकबीरात सुनते हैं और आप उतनी देर रेडी हो जाइए दुआ करने के लिए। हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे इस वक्त में जबकि लोग मैदान अरफा में दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। तो तकबीरात सुनते हैं, आप भी साथ साथ पढ़िए तकबीरात।